ओम शांति। हम सबके समक्ष परम श्रद्धे आदरणीय प्रतिभा दीदी, आप नैरोबी से हैं, आपका हम बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। दीदी का आज का क्लास का विषय ही है पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा विश्व परिवर्तन। दीदी तो नैरोबी से हैं, अफ्रीका में ही आपका जन्म हुआ और अफ्रीका में ही आपने ज्ञान लिया, अफ्रीका में ही समर्पित हुए, लेकिन दीदी जी की ट्रेनिंग आदरणीय निर्मल शांता दादी जी, कौन थे निर्मल शांता दादी जी, हाँ याद है ना आपको, उन्होंने आपने ट्रेनिंग ली, पालना ली और वर्तमान में भी आप नैरोबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी के स्वागत में एक छोटी कन्या जिसका नाम है रिमझिम, बहुत उसको उमंग है कि मैं कुछ करूं, तो आई है दिल्ली शास्त्री नगर से, तो उसका गीत बजा देना, कौन सा गीत है, शिवपिया साथ है, हाँ चलो इनके साथ शिवपिया है, अभी डांस करेगी।
Thank you. शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। बाबा हमेशा मुरली में एक गीत याद दिलाता है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो जब ये कुमारी को इतने प्यार से डांस करते हुए देखा तो हमें भी हमारा बचपन याद आ गया। जो बीज पड़ा था बाबा के बने, तो इतना ज्ञान की गहराई, योग की समझ, ये सब नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि बाबा है। और सार क्या है, मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो बस यही समझ ने हमें ज्ञान की गहराई भी समझा दी, योग की समझ भी दे दी, जीवन की धारणाएं क्या है, सेवा क्या है, ये भी पूरी समझ मिल गई। तो कई बार हम ये समझते हैं कि मैं ये मार्ग पे तब चल सकती हूं जब मेरे में योग की कैपेबिलिटी हो, ये ज्ञान सुनाने या समझाने की कला हो, लेकिन वास्तव में जो भी है वो मेरे मन में और दिल में है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावरफुल वाइब्रेशंस से विश्व परिवर्तन। ऐसे तो बाबा यही काम के लिए आया है, विश्व का परिवर्तन करने के लिए। लेकिन मुझे ये याद नहीं है, बाबा ने अभी थोड़े दिन में पहले ही कहा था कि मैं बच्चों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूं। विश्व परिवर्तन हो, सत्युग की स्थापना हो, जो भी हो, बच्चे चाहिए। और बच्चे बाबा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा संबंध है, वो संबंध बाबा ने हमें अभी संगम युग पे समझाया कि बच्चे आप सब कौन हो, आत्मा हो, देह नहीं हो, लेकिन आत्मा परमात्मा की संतान, तो सही रूप से हम बच्चे बाबा के और बाबा मेरा। बस ये समझ जब दिल में आ जाती है, मन में बैठ जाती है, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली योग लग जाता है। योग एक ऐसी विधि नहीं है जिसमें से हम कुछ सिस्टमैटिकली सीखे। योग बहुत ही सुंदर तरीका है अनुभव करने का। ऐसे तो हम सारा दिन योग करते ही है, लेकिन कोई खाने के साथ करता है, तो कोई पैसे के साथ करता है, कोई शरीर के संबंध के साथ करता है, माँ हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, तो वो योग तो लगा रहा है, कनेक्शन तो है, लेकिन फर्क खाली इतना है कि देह अभिमान से निकल करके मुझे आत्मा अभिमानी बनना है, हद से निकल करके मुझे बेहद में जाना है, आवाज से परे हो करके मुझे साइलेंस में जाना है। बस ये है विधि। तो प्रैक्टिस योग लगाने की नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है मेरे कॉन्शियसनेस की, कि मैं कौन से कॉन्शियसनेस में क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। और जब मेरा कॉन्शियसनेस सही होगा तो नेचुरली मेरा योग ऑटोमेटिकली लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ना, सीखना नहीं पड़ेगा कि मैं योग कैसे करूं। कई लोग आते हैं कहते हैं कि दीदी मेरा योग लगता नहीं है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, करना है मेहनत, करनी है पुरुषार्थ, लेकिन योग लगाने में नहीं, कॉन्शियसनेस को परिवर्तन करने में। देह का भान है तो देह के भान से परे होकर के मुझे आत्मा के कॉन्शियसनेस में जाना है कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। और जब आत्मा के कॉन्शियसनेस में जाएंगे तो उसका रूप, उसका गुण, उसकी शक्ति की स्मृति आएगी कि आत्मा कैसा है, तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो ये देह का विस्तार भूलता जाएगा और मैं आत्मा हूं। और आत्मा के गुण कैसे है, तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा के गुण जब स्मृति में आएंगे तो धीरे धीरे मेरी स्थिति ऐसी बनती जाएगी, मैं शांत स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, तो ये स्वरूप बनता जाएगा। और जितना जितना मेरी ये स्मृति रहेगी तो मुझे याद आएगा कि मैं ये धरती की नहीं हूं, लेकिन मैं कैसी दुनिया की हूं, परे थे परे दुनिया। और मेरा लक्ष्य क्या है, मैं ये संसार में आई क्यों हूं, तो ये याद आएगा। आजकल तो हम सब मनुष्य भूल गए हैं ना कि दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में स्टेटस लेने आए हैं, फिर थोड़ी नामना करने आए हैं, पोजीशन लेने आए हैं, बैंक अकाउंट इकट्ठा करने आए हैं। तो पूरा हमारा जो लक्ष्य है ना, वो मुझे याद आ जाएगा कि मैं ये दुनिया में क्यों आई हूं एज मनुष्य। लेकिन उसके बाद हम इतने लकी हैं, कल आपने नृत्य नाटिका में देखा ना कि भगवान ने आपको चूज किया, तो भगवान ने आपको क्यों चूज किया, इतने बड़े संसार, इतनी सारी आत्माएं, इतने सारे लोग दुनिया के कोने कोने में, लेकिन फिर भी आपको ही क्यों चूज किया। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जहां बाबा का घर है ना, वो या मधुबन भी है, माउंट आबू भी है, हम दूर दूर से आते हैं मधुबन का सुख लेने, और बाजू में रहने वाले को पता भी नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। आप पे सेंटर में जाएंगे, दूर दूर से जाएंगे मुरली सुनने, तपस्या करने, और बाजू वाले को पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। बोलते पता नहीं, रेड लाइट्स है और यंग यंग बहने हैं, आंखें खुली रख करके बस ऐसे देखती रहती है, कंप्लीटली जैसे बुद्धि में वो कंफ्यूजन है। लेकिन हमने परख लिया, हमने कैसे परखा, तो बाबा ने हमें परखा कि ये मेरा बच्चा कल्प पहले का है। तो बाबा ने हमें चूज किया कोने कोने से। पता है कई बार एक माला टूटती है ना, तो उसके जो वो है ना सीड्स है ना मन के, वो कहाँ कहाँ गिरते हैं पता ही नहीं चलता है। कई बार दो चार दिन के बाद देखेंगे तो वो कोने से बोला टूटा तो वहां था, यहाँ कैसे आ गया। नहीं, तो इसी प्रकार से जब द्वापर युग में यूनिटी की माला टूटी, एकता की माला टूटी, तो आत्माएं अलग अलग कोने में बिखर गए। कोई अलग जाति का, तो कोई अलग रंग का, तो भाषा का, तो धर्म का, ऐसे ऐसे कोने कोने में। तो भगवान ने हमें भी ऐसे कोने से ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें पहचान लिया कि ये मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं। अभी ये मैं आप लोगों को क्यों रिमाइंड कर रही हूं, क्योंकि यही मेरे थॉट्स को परिवर्तन करेंगे, पावरफुल। क्योंकि दुनिया की सिचुएशन, दुनिया की बातें, वो सब क्या है, तो वो मेरे पावर को थोड़ा ड्रेन करता है। जो शक्ति है ना, उसको अननेसेसरी खींच लेती है, तो मुझे क्या बना देती है, वीक बना देती है। दुनिया की चिंता है, दुनिया के विचार है, नेगेटिविटी है, आवाज है, पोल्यूशन है, तो ये सब मुझे वीक बनाता है, ड्रेन आउट कर देता है। जैसे बाबा लीकेज की बात करते ना, तो लीक होता है। लेकिन जब मैं ये बातें स्मृति में लाऊंगी कि मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा रहने का स्थान क्या है, तो एक के बाद एक मेरे में पॉजिटिविटी पैदा करता है। और पॉजिटिविटी पैदा करते करते मैं रिचार्ज होती हूँ। जितना जितना मैं रिचार्ज होती हूँ, उतना उतना पावरफुल बनते जाती हूँ। पावर बढ़ता जाता है, रिचार्ज होते जाते हैं। तो आज की दुनिया में वातावरण देखो, वातावरण कैसा है। यहाँ से इतने सुंदर वातावरण से हम थोड़ा बाहर गए और पता चल जाएगा कि दुनिया का वातावरण क्या है। चिल्लाना, क्रोध करना, दुखी होना, दूसरों को दुखी करना, यही वातावरण है। चिंता है, फिकर है, भय है, तो ये वातावरण एक पोल्यूशन स्थापन करता है हमारी बुद्धि में, पोल्यूशन लाता है। और वो पोल्यूशन हर चीज को कॉन्टेमिनेट करता है, खराब करता है, वीक करता है। हम खाना खाएंगे ना तो भी वही होगा, और हम सोएंगे ना तो भी ऐसा ही होगा। डॉक्टर्स ने आज तक कहा है कि आप ये खाओ ये नहीं खाओ। 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी नहीं कहा कि किस क्वालिटी का। बाबा ने आकर के हमें क्वालिटी समझाई, क्वांटिटी नहीं। 8 घंटा सोकर के आप निकलेंगे ना, फिर भी आप थके थके से ही होंगे। समझा? तरह तरह के खाना खाया होगा ना, फिर भी आप भूखे के भूखे ही होंगे। उसका कारण ये है कि जब मैं भोजन स्वीकार कर रही हूं, तो मेरी मन की स्थिति क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। भले आप सिंपल खाओ, लेकिन मेरा कॉन्शियसनेस जो आत्मा के गुणों से भरा हुआ है, मैं शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं खुश हूं, तो ऐसी स्थिति में साधारण चीज भी खाएंगे ना तो शक्ति भर जाएगी। सोने जाएंगे, डॉक्टर्स ने कहा 8 घंटा, बाबा कहता कम से कम, लेकिन क्वालिटी, भले 3 घंटा 4 घंटा सो, लेकिन ऐसी क्वालिटी नींद कि उठो तो इतने फ्रेश, इतने शक्तिशाली, इतने शांत, और जो करना है सो हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ, मैं है ना यूनाइटेड नेशंस की ब्रह्मा कुमारीज की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और उसमें हमारी पोल्यूशन की बातें बहुत चलती है। जब हम ज्ञान में आए ना तो पीस की बातें चलती थी, बस दुनिया में शांति कैसे हो। अभी शांति की तो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, लेकिन दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती ही गई, वॉर बढ़ते ही गए। तो अभी लोगों को शांति के सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप इनवाइट करेंगे कि हम पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप आओ, तो बोले कि क्या पीस पीस, हाँ अशांति अशांति बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पोल्यूशन, एनवायरमेंट, ये है। लोगों को बहुत चिंता है कि आगे चल करके हमारा जो नेक्स्ट जेनरेशन और आगे का जेनरेशन है वो कैसे जिएगा, क्योंकि हर एक चीज पोल्यूट हो गई है। खाना भी पोल्यूशन वाला है, तो एयर भी पोल्यूशन वाली है, तो पानी भी पोल्यूशन वाला है, रिलेशनशिप में भी पोल्यूशन है। मतलब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, कौन से रिलेशन को हम ट्रस्ट करें। और ऐसे करते करते ये वातावरण देखो तो वो भी पोल्यूशन वाला। तो ये इतना मतलब हीट सब्जेक्ट है, और उसमें वो लोग इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि अभी ये जो सॉइल इरोजन है, तो सॉइल इरोजन से धरती से लगभग अप्रोक्सीमेटली, मेरा वो वर्ष नहीं लेना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2050 में या 2030 में ये धरती से पूरा सैंड चला जाएगा, तो खाना कहाँ ग्रो करेंगे, पानी भी सूख जाएगा तो पानी कहाँ से लाएंगे। तो अभी वो लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं प्लास्टिक का बनाने का, जिसमें पानी भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है, और भले ह्यूमन बीइंग बीमार पड़े और मरे लेकिन भूख नहीं मरे, बस ये एक विचार है, वो भी पोल्यूशन है। तो एक बार हम एक कॉन्फ्रेंस में था, तो हमने ये बात सुनी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करो कि मनुष्य भगवान के पास गए और भगवान को बोला, खास मनुष्य में भी साइंटिस्ट, क्योंकि आजकल साइंस का बहुत जोर है ना, तो साइंटिस्ट भगवान के पास गए और भगवान को बोला, आपने मनुष्य की बहुत सेवा की, अभी आप रिटायर हो जाओ। तो भगवान ने कहा, अच्छा मैं क्यों रिटायर हो जाऊं, क्योंकि अभी मनुष्य इक्वल्स टू गॉड है, सब कुछ कर सकते हैं, तो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग कर लेते हैं। अच्छा, भगवान ने कहा कि आप मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बताओ कि मैं भी कर सकता हूं और आप भी कर सकते हो, तो मैं फिर रिटायर हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बाहर से मिट्टी ली, सैंड लिया, और मिट्टी का एक छोटा सा जैसे बेबी बनाया, और वो बेबी में लोग ने क्लोन करके जान डाली। तो आजकल तो क्लोनिंग करते हैं ना, तो बच्चा बन गया। अभी कुदरती बच्चों को जन्म देना वो तो कुदरत की ही बात है ना, ड्रामा की बात है, भगवान इतना अथॉरिटी वाला है, लेकिन ये तो ये लोग ने कर लिया। तो भगवान ने थोड़ा स्माइल किया साइंटिस्ट के सामने और कहा कि आपने जो बाहर मिट्टी ली ना, वो मिट्टी तो मेरी है, आप लोग बनाओ, मिट्टी बनाओ, फिर क्लोन करो, तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। समझ में आया? आप थोड़ा विचार करो कि भगवान ने हमें इस धरती पर 5 तत्व दिए हैं, ऐसे कहा जाता है हमारा ये शरीर भी पांच तत्वों से बना हुआ है। तो हम ह्यूमन बीइंग ने उसको यूज करते 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 पूरा खत्म कर दिया, धरती को भी खत्म कर दी, पानी को भी पलूट कर दिया, एयर को भी पलूट कर दिया। तो अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं, पोल्यूशन को कैसे बचावे, मतलब धरती में ये केमिकल्स डालो, वो डालो, वो डालो और ग्रो करो, पानी को प्यूरिफाई करो, मिनरल वाटर बनाओ और वो पियो, एयर को भी वो करने के लिए ये लोग तैयार है, एयर शुद्धि करने के लिए। लेकिन इसकी शुद्धि कौन करेगा? मनुष्य के मन की शुद्धि, इसका पोल्यूशन कौन करेगा? तो ब्रह्मा कुमारी एक प्रोग्राम करती है दुनिया भर में, थिंक ग्रीन एंड थिंक क्लीन। थिंक ग्रीन, ग्रीनरी तो हमने सब बर्बाद कर दी, थोड़ी बची है वो भी कर रहे हैं कंक्रीट जंगल बना करके, और ये भी जैसे इम्प्योर बन गया है नेगेटिविटी। तो रूट कॉज यहां है, समझ में आया? तो बाबा ने आकर के हमारे संकल्प को परिवर्तन किया, हद से बेहद, स्थूल से सूक्ष्म, और मटेरियलिस्टिक जो है उसको स्पिरिचुअल बनाया। तो बाबा ने हमें पहले तो ये याद कराया कि मैं कौन हूं, मैं देह नहीं लेकिन एक चैतन्य आत्मा हूं, और मेरे गुण क्या है, मेरी शक्तियां क्या है, वो स्मृति दिलाई। खाली स्मृति नहीं लेकिन साथ साथ स्थिति, मुझे ऐसा बनना है, स्वरूप बनना है, एम्बॉडीमेंट बनना है। तो इसकी प्रैक्टिस हमारी चल रही है, अभी हम परफेक्ट नहीं है, अभी परफेक्ट नहीं है लेकिन परफेक्ट जरूर बनेंगे, तो ये निश्चय हमें है। बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, अपने आप में निश्चय, और हो जाएगा हमारे संकल्प परिवर्तन से हमारी स्थिति परिवर्तन होती है, और स्थिति परिवर्तन होने से मेरा मन नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में चला जाता है। जब पॉजिटिव बनेगा ना तो मैं कॉन्स्टेंटली रिचार्ज होती रहूंगी, और वो जो रिचार्ज होने की विधि है ना, वो बाबा ने हमें योग सिखाया है। योग मतलब कनेक्ट होना, कनेक्ट यूनियन मतलब मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हूं। ऐसे नहीं कि खाली बैठते हैं तो ही योग होता है, चलते फिरते खाते पीते कर्म करते भी मेरा योग लगता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी होती है। पता है आप ड्राइव करना सीखते हो ना, तो ऐसे नहीं देखते वैसे नहीं देखते, बस सीधा सीधा, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो बातें भी करते हैं, गीत भी सुनते हैं, क्लास भी सुनते हैं, और मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं, और अटेंशन कितना रहता है कि भले मैं मिस्टेक करो या न करो लेकिन सामने वाले को भी हम बचाते हैं। तो ये ड्राइविंग की प्रैक्टिस है ना, तो इसी प्रकार से योग की भी मुझे प्रैक्टिस चाहिए। बस योग तो है, खाली मुझे प्रैक्टिस करना है। तो वो प्रैक्टिस हम नमः श्याम कर्मयोग उसमें करते जाते हैं। तो जितनी जितनी मेरे में शक्ति भरती है उससे विश्व कल्याण तो बहुत दूर की बात है। पहले मैं अपना तो परिवर्तन करूं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स मी टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो दुनिया का परिवर्तन करना इतना हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा आप अपने आप को ही परिवर्तन करो। तो इतना जो हमने बातें की मन की स्थिति की कॉन्शियसनेस की, वो परिवर्तन ही है। कई बार मैं थोड़ा भी कभी अपने आप को देखती हूँ, चेक करती हूँ, तो मैं थोड़ा जोक कर लेती हूँ कि बाबा ने मुझे इतना चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया कि मैं अपने आप को देखूं तो मुझे पहचान ही नहीं है कि ये मैं हूं, मैं अपने आप को भी भूल गई हूं ऐसा लगता है। तो लौकिक रूप तरीका उसमें से यहां तक पहुंचना वो स्व परिवर्तन है। आप अपने आप को ही नहीं पहचानते हो, भूल गए हो। तो यही स्थिति हमें चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत साल के बाद मैं मेरे बर्थ कंट्री में गई ना, जहां मैंने ज्ञान लिया, मैं समर्पित हुई, वो जैम्बिया है, सदर्न अफ्रीका। और मैं वहां कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए गई, तो वहां मुझे मेरी फ्रेंड मिली, लेकिन वो मेरे से बात नहीं कर रही थी, वो हमारे साथ जो सेंटर का भाई था ना उससे बात कर रही थी। मैं उसको पहचान गई क्योंकि वो तो वैसे की वैसे ही है, शायद थोड़ी बूढ़ी हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। सबसे पहले तो यही कपड़े में नहीं पहचाना, क्योंकि ये कपड़ा तो हमने बाबा के बनने के बाद पहना यूनिफॉर्म। तो ऐसे ही वो बातें करने लगी वो भाई के साथ, और बातें करते करते कहती है आजकल प्रतिभा कहाँ है। तो ये हंसने लगा, बोला तू ही कहने मुझे कहाँ है। भाई हंसने लगे, तो वो बोलती पता नहीं ये कुछ ये ब्रह्मा कुमारी में चली गई है और मैंने सुना बहुत डीप हो गई है, उसमें ही पूरा डूब गई है, मतलब लॉस्ट हो गई है। मेरे मन में मैंने कहा लॉस्ट थी, अभी मैंने अपने आप को ढूंढ लिया है, समझ में है, क्योंकि दुनिया वाले तो उसको लॉस्ट ही कहेंगे ना, लेकिन हमको पता है कि हम ये पुरानी दुनिया में गुम हो गए थे और बाबा ने हमें ढूंढ लिया। बाबा ने ढूंढा, बाबा ने हमें याद दिलाया कि आप कौन हो, तो हमने अपने आप को भी ढूंढ लिया। तो वो ऐसे बोली, उसके बाद मैंने कहा हाय हाउ यू, आवाज पहचान गई। बोला प्रतिभा, मैंने कहा हाँ। बोला मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, तूने ये क्या कर दिया है, समझ में। तो लौकिक दुनिया के लिए ये जैसे शौक है, लेकिन हमारे लिए वो दुनिया में जीना शौक था, और अभी भगवान ने हमें ऐसे बाहर निकाला और इतना सुंदर बनाया, पवित्रता, सिंप्लिसिटी, रॉयल्टी, ये याद करो। जब याद करेंगे ना तो हमारा कनेक्शन वो बनाने वाले के साथ जाएगा। और उसमें क्या होगा कि स्व परिवर्तन में स्ट्रेंथ आता जाएगा, ताकत आती जाएगी, हम पावरफुल बनते जाएंगे। तो वो भी बाबा का मुरली का गीत है ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो उसके दो मीनिंग होते हैं कभी कभी, समझा, दुनिया भले कुछ भी करे मैं दुनिया से बदलूंगी नहीं, लेकिन नहीं, यहां मीनिंग वो उल्टा है कि भले दुनिया कुछ भी करे मैं बदल करके बाबा की बन के रहूंगी। तो इतना परिवर्तन जब मेरे में आएगा, स्व परिवर्तन, तो विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैं हूं, मैं भले कितने भी है लेकिन मैं अपने आप के ऊपर फोकस करूं, सी ये इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जो इतना इंपॉर्टेंट मानेंगे, रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि मेरे चेंज होने में ही विश्व का कल्याण है, तो आप विचार करो आपका इंपॉर्टेंस कितना है। क्योंकि दुनिया में बाबा ने भी कहा ना कि दादियां, आप दादियों के ऊपर डिपेंड होते हो या अपने ऊपर? दादियों ने अपना काम कर लिया, बड़ों ने अपना काम किया, अभी मुझे क्या करना है? तो मुझे अपने आप को देखना है। मुझे तो लौकिक दुनिया का इतनी स्मृति भी नहीं है, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए लौकिक जीवन की, क्योंकि साल भी काफी बीत गए। लेकिन कभी कभी जैसे ये बचपन वाले दिन आ जाते हैं याद, वो भी बहुत मीठे याद है। हम भी मधुबन में जब आए तो वो छोटे थे, बहुत छोटे, अपने पेरेंट्स के साथ आए, तो दादी लोगों को पता चला कि हम थोड़ा डांसिंग सीखते हैं। दादी ने कहा बाबा के सामने डांस करो, तो हमने बाप दादा के सामने हिस्ट्री हॉल में डांस किया। अभी आप समझेंगे कि ज्ञान मार्ग में बड़ी दीदी बनना या बड़े पोजीशन में जाना, उसके लिए अच्छे अच्छे क्लासेस कराना, अच्छे अच्छे भाषण करना तो ही बड़ी दीदी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। खाली दिल में एक स्पार्क जगाना है, और वो स्पार्क क्या है? मेरा बाबा। वेरी गुड, मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस इतना ही। और उसके बाद आप जो भी करते जाएंगे ना, किचन में खाना बनाया तो भी शक्ति भरी अपने आप में और औरों में, क्लास कराया तो भी शक्ति भरी, लौकिक जॉब पे गए, बिजनेस में गए तो भी शक्ति भरी, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है, बाबा का है। मैं तो निमित्त मात्र, एक इंस्ट्रूमेंट हूं। कॉन्स्टेंट बाबा ने पूरी दिनचर्या में, पूरे कार्य में हमें ये याद दिलाया है कि बाबा मेरा और मैं बाबा की। कहां भी, अभी भी, अभी तो मैं बहुत सालों से सेंटर में निमित्त हूं, लेकिन हमारा ट्रैवलिंग बहुत है दुनिया भर में, यही सेवा के कनेक्शन से। तो मैं जब बाबा के रूम में जाती हूं ना, तो बाबा को कहती हूं बाबा चलो हम जा रहे हैं सेवा पर, आप मेरे साथ चलो। तो बाबा को साथ में लेकर के जाएंगे ना, तो जो भी होगा, विघ्न आएंगे, परीक्षा आएगी, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो परिवर्तन कर देगा नेगेटिव से पॉजिटिव में। और इसी प्रकार से कई बार कई हंसते हैं सेंटर में, आप बाबा को लेके नहीं चले जाना, हमारे लिए यहां छोड़ के जाना। तो मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मुझे एक नाजुक फूल की तरह यहां से वहां पहुंचा देना, तो वो उठा करके यहां से वहां पहुंचा देता है। वास्तव में देखो तो कई बार तो 20 आवर्स की फ्लाइट्स होती है, जाके कोई जगह नहीं है जहां गर्म खाना बना करके खाने का होता है, होटल में होते हैं, जो खाना पैक किया है वही खाना है। लेकिन फिर भी इतना पावर है, इतनी शक्ति है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट मेरा सुनाऊं कि एक बार हमको न्यूयॉर्क से एक लेटर आया और वो लेटर था यूनाइटेड नेशंस का। दादी जी ने नाम निकाले थे कि एक एक रीजन में कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रह्मा कुमारी का टू द यूएन। तो मेरे को लेटर आया कि आप ये लेटर को आपकी यूएन ऑफिस से साइन करा करके हमको जल्दी भेजो। 6 रीजन्स है तो 6 रीजन्स के लेटर्स इकट्ठे कर करके फिर एक्रेडिटेशन होता है। तो मैं जहाँ रहती हूँ केनिया में, वहाँ वो ऑफिस नहीं है, अबाउट 2-3 घंटा आगे जाकर के इथियोपिया में है। तो वेदांती बेन ने मेरे को बोला कि प्रतिभा आप जल्दी जाओ, तो जल्दी इथियोपिया जाओ, अभी ऐसे थोड़े ही जा सकते हैं। देखो टिकट भी निकालनी है, बुकिंग भी करना है, इतना पैसा भी होना चाहिए, फिर क्या बोलते हैं, वीजा लेना होता है, बहुत कुछ है। लेकिन संकल्प किया ना, संकल्प सिद्धि, सब कुछ हो गया और मैं नेक्स्ट मोमेंट फ्लाइट पे थी। तो तब तो मैंने बाबा को बोला था, बाबा चलो हम जा रहे हैं, ये साधारण काम नहीं है, मुझे बहुत जल्दी करना है। और वहां की बहन को भी मैंने बोल दिया कि अब थोड़ा यूएन का अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि मेरा लेटर स्टैंप कराना है। तो ये बहन बेचारी इतना फोन करे, लेकिन कोई उठाता ही नहीं है, यंग है। और फिर मैं पहुंची, लैंड हुई तो बोलती, बहन मैंने बहुत फोन किया, वो उठाते नहीं है। तो मैंने कहा चलो हम जाते हैं उसके बिल्डिंग के पास। लेकिन बिल्डिंग का कायदा ये है, जब तक आपको कोई अपॉइंटमेंट न मिले तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हो, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, अभी क्या करें। तो ये बहन क्लेवर तो थी बहुत, कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगी। मैं 4 दिन रहने वाली थी तो मैं पहुंची, उसने इतने प्रोग्राम्स रख दिए थे, क्योंकि एक लेटर साइन कराने में तो पूरे दिन तो मैं फ्री हूं ना, तो प्रोग्राम्स रख दिए थे, यहाँ लेक्चर रखा था, यहाँ क्लास रखा था, वहां टॉक, वहां वीआईपी मीटिंग, ऐसा बहुत कुछ रखा था। मैंने भी उसको आइडिया दिया था कि ऐसे करना, और ऐसे करते हम सब जगह जाने लगे प्रोग्राम में। अभी आप विचार करो कि जो टिकट में बुकिंग चेंज करो तो मुझे $200 एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। तो मुझे फील होता है, हमेशा ये कॉन्शियसनेस है कि यज्ञ मेरे लिए इतना खर्चा करता है और मैं सेवा करने जाती हूं, तो ऐसा न हो जावे कि मेरे पर बोझ चढ़ जावे, क्योंकि जितना खर्चा किया और मैंने सेवा की तो मैंने किया क्या। लेकिन कम खर्च और बाला नशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं गई, मुझे वो 200 वाला बुकिंग चेंज नहीं करना था। तो ऐसे करते करते ये प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किया, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो अभी कल लास्ट डे था, इसलिए रात को मेरी फ्लाइट थी मिडनाइट। तो मैंने सोचा चलो अभी तो बुकिंग चेंज कराना पड़ेगा आज, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट चेंज कराऊंगी। तो वो दिन मेरा आफ्टरनून में वो था, क्या था, टॉक था कि कल अभी मेरा जाने का टाइम आ गया है। तो आफ्टरनून में मेरा रोटरी क्लब में टॉक था, तो हम गए। मैंने वो बहन को बोला, इतनी गारंटी है कि मुझे यहां कोई यूएन का मिल जाएगा रोटरी क्लब में, और मैं उससे अपॉइंटमेंट लेकर के पहुंच जाऊंगी और मेरा लेटर वो करोगी साइन। रोटरी क्लब में गए, बैठे, मेरे को इनवाइट किया आगे, मैं बोली, कोई भी नहीं। फिर एक ऐसा पर्सनालिटी वाला भाई था, मैंने सोचा ये तो होगा ही यूएन का मेंबर, तो टॉक के बाद वो तो चला गया, तो मैं उसके पीछे भागी कि पूछू कि आप कहाँ जॉब करते हो। तो उसने मेरे को कार्ड दिया, मैंने उसको कार्ड दिया, तो बोला आई एम एन आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट की जो एसोसिएशन है ना उसका प्रेसिडेंट हूं। वो भी यूएन के कनेक्शन से नहीं था। अभी ऐसी स्थिति में आपके पास लास्ट मोमेंट्स है तो आपके दिल को क्या होता है? थोड़े दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, थोड़े। तो मेरे को भी एक सेकंड के लिए थोड़ा थॉट आया, लेकिन जल्दी जल्दी उसको बैठने नहीं दिया। मैंने कहा चलो एटलीस्ट मैं अंदर तो जाऊं, सबको छोड़ के ऐसे ही आ गई हूं, भागी ना पार्किंग में। तो वहां मैं गई और ऐसे करते वो जो रोटरी क्लब की सेक्रेटरी थी ना वो वाइंड अप कर रही थी। तो बोला सिस्टर प्रतिभा योर टॉक वाज सो गुड बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा क्यों? बोला मेरा जॉब ऐसा है ना कि स्ट्रेस के बिना और कुछ है ही नहीं वहां। ऑफिस में एंटर हो तो स्ट्रेस, निकलो तो स्ट्रेस। तो मुझे आपकी बहुत हेल्प चाहिए सेक्रेटरी। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा आप कहाँ जॉब करते हो? बोला यूएन में। मैंने कहा आई अग्री कि आप बहुत स्ट्रेस कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी स्ट्रेस कर दिया है ये यूएन ने। तो जो स्ट्रेस निकालने वाली है उसको भी स्ट्रेस कर दिया कि कल मेरी फ्लाइट है और मैं क्या करूंगी। तो बोला क्या आपको क्या हेल्प चाहिए? तो मैंने उसको समझाया। तो बोला यू वोंट बिलीव, जो साइन करने वाला है ना वो मेरी बॉस है, तो आप आ जाओ कल। तो मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिया, नाम दे दिया और दूसरे दिन सुबह हम आराम से पहुंच गए और उसने अपॉइंटमेंट ले लिया था उसकी बॉस का। और हम जाके ऑफिस में बैठे, उसने लेटर तो साइन कर दिया लेकिन फिर बातें करते करते वो हमारा बाबा का एक बच्चा है लोकल आइवोरियन, तो उसकी वाइफ है, कमाल है। तो बोलती मेरा हस्बैंड तो तेरे पास रोज आता है। तो मैं कहा मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि एट दैट टाइम 4 days वो आउट ऑफ कंट्री था। तो आपने ये पूरा एक्सरसाइज समझा कि कंप्लीटली मेरे सामने सब कुछ था लेकिन ड्रामा ने उसको थोड़ा दूर भेजा। क्यों भेजा? मेरी मेहनत के लिए, तपस्या के लिए, थॉट्स के लिए, मेरी धारणा के लिए कि मैं डाउट न करूं, नहीं बाबा में, नहीं ड्रामा में, नहीं अपने आप में। इसलिए उसको थोड़ा हटा दिया ड्रामा ने, नहीं तो बहुत इजी हो जाता था ना। तो बहुत साल पहले ये हम भारत में एक सेंटर रेंट पे था, बहुत साल पहले, नियरली 50 years ago। तो वो लोग को घड़ी घड़ी लैंडलॉर्ड बोलता है खाली करो खाली करो खाली करो, और ये जावे कहाँ इतना फुल फ्लेज सेंटर। तो वो लैंडलॉर्ड ने बोला अभी आप नहीं करेंगे ना खाली तो मैं आपका सामान रास्ता पर रख दूंगा। और ये बहुत मेहनत की और तपस्या की, बाबा को बोला बाबा ये मकान नहीं मिल रहा है क्या करें? बाबा ने कहा आप जाओ और मिल जाएगा बस। और मिल गए, 2 साल से ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहा था। तो तब तो ट्रेंड्स में जाते थे ना 50 years ago। तो बाबा को फिर संदेशी ने बोला बाबा मिल गया, तो इतना इजी था तो आपने इतना लंबा क्यों कराया? बाबा ने कहा बच्चे जो आराम से आपको मिल जाता ना तो आप कहेंगे हमने ढूंढा, लेकिन मेहनत से मिला ना तो आप कहेंगे बाबा ने दिया। बुद्धि योग देखा। तो मैं भी ये लेटर साइन कराने में मैंने तो कुछ नहीं किया, बाबा ने किया। और मैं रात की फ्लाइट से चली गई और कम खर्च, बाला नशीन और सब कुछ हो गया। ये है योग, ये योग है। समझ में आया? योग ऐसे नहीं है लाल लाइट करो और पॉइंट ऑफ लाइट के सामने बैठ करके आपने योग किया। जहां भी हो, लेकिन हाँ फिर आपके टीचर को बोलना नहीं कि प्रतिभा बेन ने बोला है अभी क्लास में नहीं बैठने का है योग के लिए, वो प्रैक्टिस भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ही तो हम कर्मयोगी बन सकेंगे। ख्याल आया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि विश्व परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने आप में क्या परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे कपड़े पहन करके आप आराम से बैठ गए और आप परिवर्तन हो गए, लेकिन मेरे सोच को परिवर्तन करना है, मेरे पुराने संस्कार को परिवर्तन करना है। बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा। मैं बाप दादा का रिवाइज कल था ना, कल था, हाँ कल था, तो मैं वेदांती बेन के साथ चिट चैट कर रही थी। मैंने कहा ये पुराना संस्कार घड़ी घड़ी आ जाता है, चेंज करना है, लेकिन फिर भी पॉपअप हो जाता है, हो जाता है, उसके बाद याद आता है ये मेरा पुराना संस्कार है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन हो जाता है। तो बोला सच बात है। और हम बाबा के हॉल में गए और वहां पर बाबा की मुरली सुनी, बाबा ने कितना अच्छा कहा, कुछ भी करना है बाबा कहो और हो जाएगा। तो पुराने संस्कार कितने भी कड़े हैं, 63 जन्म के हैं, लेकिन वो भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो वो मुझे परिवर्तन करना है, और नेचुरली हद से निकल करके बेहद में जाना है। तो बस इतना इतना परिवर्तन करते करते विश्व परिवर्तन हो जाएगा। हमें विश्व की तरफ दौड़ना नहीं है, कितना दौड़ेंगे, कितना भागेंगे, कितनों को कहेंगे, लेकिन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। लेकिन स्व परिवर्तन भी करना है, बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। पता है इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसमें अभी थोड़ा बहुत चेंज आ गया है। पहले के जमाने में जो इंग्लिश था और अभी के जमाने में जो इंग्लिश है, उसमें रात दिन का फर्क है बहुत। अभी आप तो कहेंगे बेन मुश्किल से हम इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें आप ये क्या सिखाते हो। लेकिन पहले के जमाने में जब हम छोटे थे ना, तो कहते थे, टीचर्स क्या बोलती थी पता है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश हिंदी में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी कोई भी स्टूडेंट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तू कौन मुझे टीच करने वाली। लेकिन वी आर लर्निंग, हम सब लर्न कर रहे हैं, आप भी लर्न कर रहे हो, मैं भी लर्न कर रही हूँ। कभी भी हम ये नहीं कहे कि मैं आपको टीच करती हूँ, टीच करने वाला एक ही है, सर्वशक्तिवान, वो हमारा बेहद का टीचर है। लेकिन हम सब लर्न कर रहे हैं, हर मोमेंट पे लर्न कर रहे हैं, हर स्टेप में लर्न कर रहे हैं। तो लर्न करते करते हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपको यही गुड विशेस के साथ ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय प्रतिभा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत अच्छा पॉल्यूशन के ऊपर और कैसे हम बाबा को यूज करें तो हमारा हर कार्य सहज हो सकता है। तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
खुदाई पाओगे ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे।